ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं मनमोहक कार्यक्रमों की सुमधुर प्रस्तुतियां।
आगामी शनिवार दिनांक 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। उस संदर्भ में हम आज भगवान के श्रीमुख से एक प्रवचन सुनेंगे और आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम के तहत एक लघु कथा भी सुनेंगे। दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम से लिए गए एक अलौकिक प्रसंग और गान सरिता के तहत एक सुमधुर गीत सुनने के साथ ही साथ हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक भेंट वार्ता भी सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज हमने 7 मई सन 2001 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बाबा द्वारा वृंदावन आश्रम में दिए गए संभाषण का एक भाग चुना है। इसमें भगवान हमें निर्वाण के मार्ग की विशेषता समझाते हुए सदाचारी मनुष्य बनने की उपयोगिता समझा रहे हैं, जिनकी स्वयं ईश्वर को तलाश रहती है।
प्रेम स्वरूप लारा
न पुण्यम न पापम न सुखम न दुःखम न मंत्रो न जपम दान यज्ञम अहम भोज्यम न भोज्यम न सुखम शिवानंद रूपम शिवोहम 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 न पुण्यम न पापम
न मैं पुण्य हूँ न पाप हूँ न सुख और न दुख हूँ न मंत्र न जप न दान और न यज्ञ हूँ मैं न भोजन हूँ न खाने वाला हूँ मैं आत्मा हूँ मैं चैतन्य हूँ आनंद हूँ
प्रेम स्वरूप लारा
प्रेम स्वरूपो
ई जगत नंदु పుణ్యము కాని పాపము కాని సుఖము కాని దుఃఖము కాని ఏది లేదు।
इस संसार में पाप पुण्य सुख दुख जैसा कुछ भी नहीं है।
न मंत्रम
मंत्रम కాని యజ్ఞము కాని యాగము కాని ఇవన్నీ కూడాను కేవలము ఒక భ్రాంతులే।
मंत्र यज्ञ याग वगैरह सब एक भ्रांति मात्र है।
सर्वत्र निंगिनदि ఒక భగవంతుడు ఒక్కడే।
एक ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त है।
మీరందరి కూడాను భగవత్ స్వరూపులు।
तुम सब भी भगवान के ही रूप हो।
धर्मम सत्यम
धर्म ही सत्य है।
सत्यम एंड ट्रूथ धर्मम ఈ రెండింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం గుర్తించుకోవటమే నిజమైన మానవత్వం।
और सत्य ही धर्म है। आपस में इन दोनों के संयोग को समझना ही वास्तव में मानवत्व है।
ई सत्यमनु जगत को भौतिकंगा चाटे निमित्तमै सत्यमने नीति अन्नारु।
इस सत्य को संसार को समझाने के लिए सत्य को नीति भी कहा गया है।
धर्ममने रीति अन्नारु।
धर्म को रीति कहा गया है।
त्यागम ने ख्याति अन्नारु,
त्याग को ख्याति कहा गया है।
नीति रीति ख्याति ये मूडिंटी ओक एकत्वमुनि मानव जाति।
नीति रीति ख्याति इन तीनों को मिलाकर बनी है मानव जाति।
कानी दुरदृष्टवशात्तु ईनाडु भौतिक लोकमुनंदु ई नीति రీతి ఖ్యాతి ఈ మూడుకుడును కనిపించటం లేదు.
లేకిన్ దుర్భాగ్యసే ఆజకల్ సంసార్ మే యే తీనో నీతి రీతి ఔర్ ఖ్యాతి దిఖాయి నహీ దే రహీ హై.
ప్రాచీన కాలమునందు సిద్ధార్థి గౌతమ బుద్ధుడు అని పేరుగాంచిన వ్యక్తి తన సత్యస్వరూపాన్ని గుర్తించే నిమిత్తమై నిర్వాణ నిమిత్తమై అనేక సాధనలు సల్పుతూ వచ్చాడు.
प्राचीन काल में सिद्धार्थ ने, जिनका नाम गौतम बुद्ध था, अपने सत्य स्वरूप को पहचानने हेतु निर्वाण के लिए अनेक अनेक साधनाएं की।
अनेक वेद मंत्रमुलु कुडनु पठिंचाडु,
अनेकों वेद मंत्रों का भी अध्ययन किया।
जगत्तुनंदुकल पेद्दलनंदरिनी कुडनु दर्शिंचाडु,
उस समय संसार में रह रहे महात्माओं की भी शरण गही।
अन्य साधनलु यंदु कुडनु तानु భాగములు వహించాడు.
హర్ ప్రకార్ కి సాధనాఓ కా ఉన్హోనే భలి భాంతి నిర్వాహ కియా.
కట్టకడపటికి ఇది ఏది కుడును సరియైన సాధన కాదు అని సత్యాన్ని గుర్తించాడు.
అంతత ఇన్మే సే కోయి భీ మోక్ష దిలాపానే మే సక్షమ్ నహీ హై యే సత్య ఉన్హోనే జాన్ లియా.
భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి పంచ ప్రాణములను కూడాను పరమాత్మునిగా విశ్వసించాడు.
ఈశ్వర్ ద్వారా प्रसाद स्वरूप प्रदत्त पंच प्राण ही परमात्मा का रूप है ऐसा उन्होंने जान लिया।
शब्द स्पर्श रूप रस गंधम,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध
इंद्रियों तो कूड़ने चुनती भी,
ये पांचों पांच इंद्रियों से जुड़े हुए हैं।
ये पंचेन्द्रियों पवित्रमैन मार्गमलो प्रवेश पेट्टी अनुभविंचटमे निर्वाणमनि गुर्तिंचाडु.
इन पांच इंद्रियों का पवित्र मार्ग में प्रयोग करना ही निर्वाण का रास्ता है ये उन्होंने जान लिया।
जपमु ध्यानमु योगमु यज्ञमु इवन्नी कुडनु भौतिकमैनटुवंटि ओक क्रियले अनि गुर्तिंचाडु.
उन्होंने ये भी समझ लिया कि जप ध्यान योग यज्ञ वगैरह ये सब बाह्य प्रक्रियाएं हैं।
देहाभिमान उन्नटुवंटि वारिके ई साधनलन्नी कुडनु अवसरमु.
जिन लोगों में देहाभिमान अर्थात अपने आप को शरीर समझना व्याप्त है, ये साधनाएं उनके लिए जरूरी हैं।
आत्माभिमान करिगिने ट्वेंटी व्यक्ति की ये साधन ये भी कुड़नो अकर ले।
आत्माभिमान में संलिप्त अर्थात अपने आत्म स्वरूप को समझ चुके व्यक्ति के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है।
कनुकरे सम्यक दृष्टि चेप्पाडु,
इसीलिए उन्होंने सम्यक दृष्टि रखने को कहा।
సమ్యక్ వాక్కు అన్నాడు,
సమ్యక్ వాణీ కహా,
సమ్యక్ శ్రవణము అన్నాడు,
సమ్యక్ శ్రవణ కహా,
సమ్యక్ మననము అన్నారు,
సమ్యక్ మనన్ కహా,
సమ్యక్ క్రియా అన్నాడు,
సమ్యక్ క్రియాభి కహా.
ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఐదు కర్మల ఎందుకును దోషములు లేక సకలమైన మార్గములో సరైన రీతిగా అనుభవించడమే నిజమైనటువంటి నిర్వాణము అన్నాడు.
उन्होंने कहा कि इस प्रकार से पंच कर्मों को दोष रहित करके सही रास्ते पर चलते हुए सही तरह से अनुभव करना ही वास्तव में निर्वाण है।
भगवंतुडु इच्चिनटुवंटि ई नेत्रमुलनु एंदुकु पवित्रमैन मार्गमुलो प्रवेशपेट्टकूडदु.
ईश्वर द्वारा प्रदत्त आंखों का प्रयोग पवित्र मार्ग में क्यों नहीं होना चाहिए?
ई नेत्रमुलनु दोषमैनटुवंटि मार्गमुलो प्रवेशपेट्टि
इन नेत्रों का दोषपूर्ण मार्ग में इस्तेमाल करके
अमित दोषमुलंता कुडनु पेंचुकुंटुन्नाडु मानवुडु.
मानव अमित दोषों के कोटे में अभिवृद्धि ही कर रहा है.
मनसि योक्क तत्वानि मालिन्यपरचुकुंटुन्नाडु,
अपने मानस तत्व को मलिन कर रहा है.
मनसे मालिन्यमैना इंका मनिषि ए रीतिगा निर्वाणं पोंदगलडु.
जब मनस ही मलिन रहेगा तब किस प्रकार से मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है?
కనుకనే మన గుణములు పవిత్రమైనటువంటివిగా ఉండాలి.
ఇసిలియే హమారే గుణ్ పవిత్ర హీ హోనే చాహియే.
మన చర్యలు పవిత్రమైనటువంటివిగా ఉండాలి.
हमारे कार्यकलाप भी पवित्र होने चाहिए।
मन दृष्टि पवित्र में
हमारी दृष्टि भी पवित्र होनी चाहिए।
मन वाकू पवित्र में
हमारी वाणी भी पवित्र होनी चाहिए।
आ विधंगा जीवించిన పడే తానే దైవంగా మారిపోతాడు।
इस प्रकार जीवन यापन करने पर हम स्वयं दैविक बन जाते हैं।
दैवानी वेतकना कर ले जो
तब भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है।
दैवमे निन्ने वेतकुंटू वस्ताडु।
भगवान स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। एनी बेसेंट ने लिखा है,
मानवुडु भारत देशम लोपला भगवंतुनि वेतुकुतू उन्नारट।
भारत देश में मनुष्य भगवान की खोज में रहते हैं।
एमटी पिच्ची,
ये क्या पागलपन है?
मनुष्य कोई भगवंतुनि वेतकटमा?
मनुष्य भगवान को खोजता है क्या? नहीं नहीं,
भगवंतुडे मंची मनुष्यनि वेतुकुंटू वस्तुन्नाडु।
भगवान ही अच्छे मनुष्य को तलाश रहे हैं।
गुड मैन एवरु अनि भगवंतुडे वेतुकुतू उन्नाडु।
गुड मैन कौन है करके भगवान खोज रहे हैं।
भगवत प्रेम को पात्रुडैनटुवंटि वाडे गुड मैन।
जो भगवत प्रेम का पात्र बन जाए वही मनुष्य श्रेष्ठ है।
हाँ, गुड मैन है गॉड मैन।
वो श्रेष्ठ पुरुष ही श्री पुरुष है।
हाँ, गुड भाव लेने पड़े बैड मैन।
अच्छा भाव नहीं होने पर वो बुरा आदमी है।
बैड मैन का गुड मैन का नेवर बी।
इसीलिए निकृष्ट आदमी नहीं श्रेष्ठ इंसान बनो।
गॉड मैन कावाली,
श्री पुरुष बनो।
अपने निजमेंट मानवत्व धरించినందుకు सार्थक అవుతుంది।
तब जाकर तुम्हारे मनुष्य योनि धारण करने की सार्थकता सिद्ध होगी।
प्रेम स्वरूप लारा,
प्रेम स्वरूपो,
अंदर यंदु ఉండేటువంటి प्रेम పరిశుద్ధమైనటువంటిది।
आपके अंदर विद्यमान प्रेम पवित्र है।
కానీ మధ్య మధ్య ఈ భ్రాంతుల చేత మాలిన్య పరుచుకుంటున్నారు।
कभी कभार बीच बीच में भ्रांतियों से मलिन हो जाता है।
दानी वाला माने विलव तगी पोतुंडादी,
जिसके कारण हमारी कद्र घट जाती है।
నీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి నేను చాలిస్తాను।
इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
నీ దగ్గర ఒక బంగారు చైన్ ఉంటుందా?
तुम्हारे पास एक सोने की चेन है।
ఈ ప్యూర్ బంగారు గా ఉంటుందా?
वो एकदम खालिस सोने की बनी है।
ఈ ప్యూర్ గోల్డ్ గా ఉన్నప్పుడు షైనింగ్ ఇస్తుందాది,
खालिस सोने की वजह से चमक रही है।
ఈ గోల్డ్ తగినటువంటి వెల కూడాను పెరిగిన ఉంటుందాది।
और इस सोने की वजह से ही इसका मूल्य भी बहुत अधिक है।
దీంతో కొంచెం కాపర్ కలిపితే,
इसमें थोड़ा सा तांबा मिला देने से
ప్యూరిటీ తగ్గిపోయింది,
इसकी प्योरिटी कम हो जाती है।
తగ్గిపోవడమే కాకుండా దాని వెల కూడా తగ్గిపోయింది,
जिसकी वजह से भाव भी गिर जाता है।
దాంతో మరింత పిత్తాలి కలిపినావు,
उसमें और पीतल भी मिला दिया।
ఈ బ్రాస్ ఈ వెండి రెండు కలపటం చేత మరింత దాని యొక్క ప్రకాశం తగ్గిపోయింది,
उसमें ये दोनों मिला देने के कारण उसकी चमक और भी घट गई।
मरिंता कापर गलिपना वो,
फिर तांबा और मिला दिया,
दानी को प्रकाश में तगी पोइंदी,
जिससे चमक और घट गई।
कट कट पड़े बंगार विलुवने पोइंदी,
और अंत में जाके सोने की कीमत ही चली गई।
अतने मानवुडु पवित्र में प्योर गोल्ड वंटी वाडु।
इसी प्रकार मनुष्य भी खालिस सोने की तरह पवित्र है।
డిజైర్స్ అనేటువంటి ఒక కాపర్ను కలుపుకుంటున్నాడు,
ఉస్నే అప్నే అందర్ ఇచ్చా రూపీ తాంబా మిలా లియా హై,
కనుకని ఈ మానవత్వం అనేటువంటి గోల్డ్ ప్రకాశం తగ్గిపోతుండాలి,
జిస్ కారణ మానవత్వ రూపీ సోనే కి చమక్ క్షీణ హో రహీ హై।
మానవత్వం అనేటువంటి ఒక విలువ కూడా తగ్గిపోతుండాలి,
మానవత్వ కా మూల్య భీ గిర్ రహా హై।
దాంతో తిరిగి బ్రాస్ కలుపుతున్నాడు,
ఉస్కే ఊపర్ సే పీతల్ భీ మిలా రహే హో।
ఈ బ్రాస్ కలపటం వల్ల బంగారు విలువ పూర్తి తగ్గిపోయింది।
इस पीतल को मिला देने से सोने की वैल्यू पूरी तरह नष्ट हो गई है।
दान द्वारा प्रकाश तगिपोइंदि,
और इसी वजह से उसकी चमक भी कम हो गई है।
ईनाडु मानवत्वानिकि विलुव लेकुंडा पोतुंडंटे एदि कारणम?
आज मानवत्व की वैल्यू गिर जाने के पीछे क्या कारण है?
अनवसरमैनटुवंटि मिक्स चेसुकुंटुन्नाडु,
अनावश्यक चीजों से मेल मिलाप ही प्रमुख कारण है।
कनुकने ई मानवुनिकि उंडवलसिनटुवंटि विलुवलु लेकुंडा पोतुंडारु।
इसीलिए मनुष्य की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लुप्त होती जा रही है।
सत्य मानवता विलुवा,
सत्य मनुष्य का एक गुण है।
धर्म मानवता विलुवा,
धर्म मनुष्य का एक गुण है।
मानवता विलुवा,
शांति मनुष्य का एक गुण है।
मानवता विलुवलन्नी चेर्चुको नीवु प्रकाशंगा उंटुंदे।
इन मानवीय गुणों को धारण करो तो तुम प्रकाशवान हो जाओगे।
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो। నాం సత్య నాం సత్య నాం జీ గురు సత్య నాం సత్య నాం సత్య నాం జీ గురు
సత్య నాం సత్య నాం సత్య నాం
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा 7 मई सन 2001 को वृंदावन आश्रम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दिए गए प्रवचन का एक भाग प्रस्तुत किया गया था।
अब प्रस्तुत है आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम के तहत एक लघु कथा जिसका शीर्षक है संतुष्टि में सुख।
संतुष्टि में सुख।
मिकी, आजकल तुम्हारा दोस्त चिकी तुम्हारे साथ फुटबॉल क्यों नहीं खेलता?
सर, उसमें अब उत्साह नहीं रहा।
लेकिन क्यों?
उसे हमेशा रक्षा पंक्ति में खेलने को कहा जाता है और वहाँ से वह गोल नहीं कर सकता।
इससे क्या फर्क पड़ता है?
उसे लगता है कि जो गोल करते हैं उन लड़कों की प्रशंसा की जाती है। क्या यह सच नहीं है?
बिल्कुल नहीं मिकी, गोल तो पूरी टीम के प्रयत्न से ही हो पाते हैं। मैदान में हर खिलाड़ी को उसकी क्षमता के अनुसार खेलने की योजना में सही जगह दी जाती है। चिकी के बिना टीम की रक्षा पंक्ति कमजोर पड़ जाएगी।
हाँ, ये तो सच है।
चलो, तुम्हारी उलझन दूर करने के लिए इस बारे में शेरू मामा से एक कहानी सुनते हैं।
बहुत दिनों की बात है, एक बार एक तोता बहुत उदास और परेशान सा घर लौटा।
पापी, आज परेशान लग रहे हो, क्या बात है बेटा?
माँ, मुझे अपनी भद्दी चोंच बिल्कुल पसंद नहीं है।
मगर क्यों? ये चोंच तो मुझे बहुत सुंदर लगती है।
दूसरे सारे पक्षियों की चोंच कितनी अच्छी है, जैसे सारस, बगुला, बाज, चील, सभी को देख लो।
तुम्हारी बात में दम तो है। बेटा, तुम एक बार काकातुआ से जाकर मिलो, वह सारे तोतों में सबसे बुद्धिमान है और जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पे रहता है। हाँ, मुझे लगता है उसी के पास कोई उपाय निकलेगा।
काकातुआ जी, नमस्ते। मेरी एक समस्या है।
बोलो पॉपी, क्या समस्या है?
मेरी चोंच बहुत भद्दी है। मेरी चोंच सारस, चील, बाज और बगुले की तरह सुंदर क्यों नहीं है?
बात तो सही है। चलो आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। पॉपी, वो कीड़े खाता हुआ सारस तुम्हें दिखाई दे रहा है?
हाँ।
अच्छा बताओ, तुम्हें कीड़े मकोड़े खाना पसंद है?
नहीं नहीं, मुझे तो सोच कर ही उल्टी आ रही है।
सारस की चोंच तो उसी के लिए बनी है। मछलियाँ पकड़ते हुए उस बगुले को देख रहे हो? तुम्हें मछली खाना है?
छी, इससे गंदी चीज तो हो ही नहीं सकती।
तब तो बगुले की चोंच भी तुम्हारे लिए काम नहीं आएगी। आओ मेरे साथ, मैं कुछ और दिखाता हूँ। उस बाज को देखो, वे चूहे और खरगोश का शिकार कर रहे हैं। तुम खाओगे चूहे और खरगोश?
छी छी।
तब तो तुम्हें बाज की चोंच की कामना नहीं करनी चाहिए। चलो अब वापस चलते हैं। अच्छा, छोटे छोटे बीजों के बारे में क्या ख्याल है?
वो भी बुरे नहीं है, पर मुझे सबसे अच्छे लगते हैं अखरोट।
बहुत बढ़िया, मेरे पास हैं कुछ, लोगे?
हाँ हाँ, जरूर।
अच्छा पॉपी, बताओ अगर तुम्हारी चोंच उन पंछियों जैसी होती तो क्या तुम अखरोट खा सकते थे?
शायद नहीं।
देखो पॉपी, तुम्हें ईश्वर ने बिल्कुल अलग बनाया है, अलग तरह की क्षमता भी दी है। दूसरों की क्षमता देखकर उनसे ईर्ष्या करने में जीवन नष्ट न करो, बल्कि अपने गुणों को पहचानो और ये जानो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ठीक है?
आपने कितनी अच्छी तरह मुझे समझा दिया कि मैं भी स्पेशल हूँ।
तुम सबको किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया गया है। दूसरे लोग कैसे दिखते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम जैसे हो वैसे ही रहकर शानदार काम कर सकते हो। अपनी योग्यता से अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। अपनी क्षमता के बल पर दुनिया को बदल डालो।
अभी आप सुन रहे थे आदर्श जीवन आनंद उपवन।
आज इसके अंतर्गत आपने एक लघु कथा संतुष्टि में सुख का श्रवण लाभ लिया। इस कहानी को हमारे लोकप्रिय वीडियो कार्यक्रम शेरू मामा की कहानियां से लिया गया था। इसे आप हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी पर जाकर देख सकते हैं और कृपया इसे और भी लोगों को दिखाएं, ताकि भगवान बाबा के संदेश जन जन तक पहुंच सके।
भगवान बाबा कहते हैं, यह समय सोने और आराम करने का नहीं है। भविष्य में उभरने वाला भव्य और महान नया भारत तुम पर निर्भर है। दृश्य पटल पर अपनी उत्तम भूमिका का निष्पादन करने के लिए भारत माँ तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। यदि भारत की नैतिकता नष्ट हो जाए तो सारे विश्व का घोर पतन हो जाएगा।
अब प्रस्तुत है साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम।
आज हम इसके अंतर्गत स्वर्गीय डॉक्टर किशन गढ़िया जी से हुई भेंट वार्ता का एक अंश प्रस्तुत करेंगे। इसके विगत भागों को हमने पहले के प्रसारण में क्रमशः प्रस्तुत किया था।
देखो, एक मैं इंसिडेंट बताऊं।
जी हाँ।
कि यहाँ एक मेरा मित्र था रमन।
ओ, जीके रमन।
जीके रमन,
सुंदरम कंपनी के,
सुंदर कंपनी के
मालिक जो थे,
जो स्वामी के बड़ा डिवोटी था।
जी हाँ।
तो हम जब स्वामी के साथ कोडाई गए थे इसके गेस्ट बनकर, स्वामी हम सबको गेस्ट को लेकर सबको उसके घर पर कोडाई में खाना भी खिलाया था।
हाँ जी हाँ, कोडाईकनाल में,
कोडाई में उतना ब्यूटीफुल इसका हाउस है। और स्वामी ने उसके साथ उधर अति रुद्र यज्ञ भी चेन्नई में दूसरा कराया था।
वो काफी के अंदर में उन्होंने भाग लिया था,
पूरा भाग लिया था,
अरेंजमेंट उन्होंने ही किया था।
अभी उसके बाद जब ओनम आने की शुरुआत थी, 7 दिन पहले स्वामी ने उसको बोला, रमन मैं तेरे को परमानेंट हाउस देता हूँ।
पर ये किस सन की बात है?
ये 2007 की बात है।
अच्छा, 2007
की बात। तो वो तो इतना खुश हो गया, बोलता स्वामी मेरे को पुट्टपर्दी में परमानेंट रूम मिल जाएगा। बोलता परमानेंट रूम C9 दे दिया। समझ गया, साउथ सिक्स
के अंदर।
हाँ, साउथ सिक्स
तीसरे मंजिल के ऊपर में नंबर 9
तीसरा। ये मकान दे दिया तो 2 रूम वाला इतना खुश था, उसने सारा फैमिली को बुलाया। चेन्नई से सब लोग आए, फिर उसको अमेरिका से उसकी डॉटर थी उसको बुलाया, सन इन लोग को बुलाया, इसका ग्रैंडसन जो डॉक्टर बन रहा था उसको भी बुलाया, सब लोग आ गया,
मतलब
सारा फैमिली आ गया।
कोई फंक्शन किया यहाँ पे?
यहाँ वो लोग ने हाउस वार्मिंग किया,
गृह प्रवेश के लिए सबको बुलाया,
सबको बुलाया
और बाहर से।
वो बोलता है ओनम भी है, आने वाली है 7 दिन में, तुम लोग सब आओ। बहुत खुशी, हर रोज मेरे को मिलता था, हर रोज मेरे नजदीक बैठता था और इतनी खुशी बताता था। तो जब ओनम के दिन सुबह 7 बजे हम लोग 7:30 दर्शन के लिए बैठ गए थे, तब वो बोलता है स्वामी आ रहा है, तो वो बोलता है हाँ, दूसरा उसके साथ विनय बैठा था, विनय जो यूथ है,
विनय कुमार यूथ कोऑर्डिनेटर,
तो वो बोलता है हाँ स्वामी आ रहा है, इसकी गाड़ी आ रहे हैं, और ये कोलैप्स हुआ।
अच्छा, उस समय जब भगवान बाबा आ रहे थे तो रमन जी गिर गए,
गिर गए
कुर्सी से। हाँ, वो मैंने भी देखा था,
वो बैठा था उधर ही नीचे, नीचे कोलैप्स हो गया।
ओहो,
समझ गया। तो फिर वो डॉक्टर चौधरी वॉलेटी उधर बैठा था, कार्डियोलॉजिस्ट, उसने उसको रिवाइव करने के लिए हार्ट मसाज करने लगा, डॉक्टर पवन माउथ टू माउथ देने लगा, दूसरे डॉक्टर लोग उधर ही बैठे थे, सब लोग ट्राई करने लगा कि कुछ रिवाइव हो, कुछ नहीं हुआ, मेडिकली वो चल बसा। फिर स्वामी की गाड़ी आ गई, स्वामी आया, स्वामी ने बोला दूर, स्वामी ने उसको पुकारा रमन, आंखें खोली उसने।
जब सब लोगों ने कह दिया कि वो नहीं रहे, उसके बाद भगवान बाबा ने उनको पुकारा और उन्होंने आंखें खोली।
स्वामी ने विभूति निकालकर उसके मुंह में दिया, फिर स्वामी ने हाथ हिलाकर चेन निकाला और उसको गले में
पहना दिया।
हम तो खुश हो गए उधर बैठकर, ने बोला स्वामी आपने तो लाइफ दे दी उसको, देखो ये डॉक्टर सब लोग बैठे थे उधर ही। स्वामी ने फिर इसके लड़के को बुलाया, फिर पानी भी मंगवाया, पानी भी थोड़ा पाया, बस फिर लड़के को बोला तुम उसको घर पर ले जाओ, चेन्नई, ये मेरे में मर्ज हो गया अभी। उसने आंखें बंद कर दी। ये मौजूद दाखला हमने उधर देखा, हम तो शोक हो गए कि देखो स्वामी परमानेंट हाउस के लिए उसको बुलाया, दिया, कैसे परमानेंट हाउस दे दिया,
लेकिन में ही विलीन कर दिया
उसको।
देखिए, इससे बड़ा परमानेंट घर और क्या हो सकता है। हम सब
सारे फैमिली को मिला दिया,
पूरी फैमिली को भी बुला लिया उस समय, क्योंकि जानते थे कि ऐसा होने वाला है।
देखो
कितनी भाग्यशाली रहे मिस्टर रमन कि भगवान बाबा के समक्ष, भगवान बाबा के विभूति और पानी लेने के बाद में भगवान बाबा के अंदर मर्ज
हो गए।
तो कितनी महान आत्मा थी वो।
ये जो ओनम के दिन हुआ था तो सारे लोग, हम लोग तो उधर स्वामी के ये डिविनिटी देखकर ही बहुत खुश हो गए। मैंने बोला स्वामी क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता।
तो भगवान बाबा जानते हैं कि हर पल हर क्षण कहां पर क्या हो रहा है, क्या करना है।
और ये मैं और बताऊं कि अभी भी जो स्वामी निराकार रूप हुआ है, कैसे कैसे बचाते हैं। मेरी लड़की को अभी रिसेंटली जनवरी में, वो ड्यूअल कैरेज उधर है, लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है उधर भी,
जी,
लंदन में, तो वो जा रही थी शाम को बच्चे को छोड़कर, फिर वापस घर जा रही थी, तो सामने से रॉन्ग ट्रैक पर एक गाड़ी आ रही थी उसके सामने।
ओहो,
ड्यूअल कैरेज, उसको उधर राइट साइड में जाना चाहिए, ये लेफ्ट साइड में नहीं आनी चाहिए गाड़ी, वो लेफ्ट साइड आ गई और ड्यूल कैरेज थी उसकी, एक गाड़ी तो पैरेलल जा रही थी तो दूसरी जा रही थी, उसने स्टेयरिंग छोड़ दिया मेरी लड़की ने और पुकारा स्वामी स्वामी स्वामी। उसने सोच लिया मैं गई, क्या स्वामी ने मिरेकल किया पता है, आगे से एक गाड़ी नीचे डिच में चली गई।
अच्छा।
दूसरी ये जो पैरेलल जा रही थी गाड़ी को आगे थोड़ी कर ली और स्वामी ने कैसे मैनेज करके लड़की की गाड़ी साइड में रख दी। फिर वो तो शेक करने लगी थी, पूरा घर पर जाकर मेरे को फोन किया, डैडी ये हुआ, मैंने बोला देख स्वामी ने बचा लिया, देखो ऐसे ऐसे तो मिरेकल बहुत करते हैं स्वामी, निराकार रूप है, आकार रूप कैसे करते हैं। क्योंकि मैं एक तुमको बताऊं, एक इंसिडेंट मेरी एक दूसरी लड़की की बात है, अभी की बात नहीं है, 4-5 साल की बात है। 5 साल के पहले जब मैं इधर पुट्टपर्थी आ रहा था तो मैंने लंदन में मेरी वो लड़की थी वहां गाड़ी मेरी छोड़ दी, मेरी सुमो गाड़ी बड़ी, समझ गए, वो बड़ी गाड़ी आती है सुमो, मैंने छोड़ दिया, मतलब बोला बेटी तेरे पास रख, मैं जा रहा हूँ पुट्टपर्थी। तो मेरी गाड़ी लेकर वो लड़की मेरी घूमती थी। एक दिन ऐसा हुआ पता नहीं कि उसका एक्सीडेंट हुआ उधर, पोल के साथ एक्सीडेंट हुआ, पोल के साथ पोल उसके गाड़ी पर ऊपर आ गया, गाड़ी सब पूरी खत्म हो गई। जब बाहर निकली वो लोग एम्बुलेंस वाले आए तो बोलता है वेयर इज द ड्राइवर, वेर इज द पैसेंजर, तो बाहर खड़ी थी, तो बोलता है नो इंजरी एट ऑल, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं। फिर मैं तो मेरे को स्वामी ने इधर पुट पर दी था मैं मेरे को स्वामी ने बुलाया अंदर आओ। मैं अंदर इंटरव्यू रूम में गया तो स्वामी बोलता है लड़की का एक्सीडेंट हुआ था मैं लंदन गया था। स्वामी
देखिए कुछ एक क्षण के अंदर में स्प्लिट सेकंड के अंदर भगवान बाबा कैसी हमारी रक्षा
करते हैं। देखो मैं तो शोक हो गया स्वामी आप कब भी बात करते हैं बोलते कल की बात है मैं कल ही गया था उधर ही। फिर हम लोग ने फोन किया कि क्या बात है तो बोलता है राइट ऑफ हो गई गाड़ी लेकिन वो खुद बच गई। मैंने बोला स्वामी ने मेरे को बता दिया अंदर। इतना पावर स्वामी के पास था कि ये एक क्षण में एक लंदन चले जाते थे तो अभी भी वो कर रहा है क्योंकि
तो
अभी ये
अभी हर क्षण हर जगह
देखो इस सेकंड लड़की के लिए जानेवारी में ये ऐसा किया कि सारी गाड़ी बचा ली उसको बचा ली।
गाड़ी जी देखिए इतने सारे आपके साथ में अनुभव हुए हैं जो कि हमें सब यही बता रहे हैं कि भगवान बाबा पूर्ण अवतार हैं कण कण में हैं क्षण क्षण में हमारे साथ हैं।
हमारे साथ
कभी ये सोचना कि भगवान बाबा हमारे साथ में नहीं है क्योंकि वो भौतिक शरीर में नहीं है ये हमारी गलती होगी।
बस
गाड़ी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने इतना कुछ हमें बताया अपने अनुभव और वृतांत मगर जब आप पहली बार भगवान बाबा के पास में आए जब एज मेडिकल स्टूडेंट आप भगवान बाबा के पास में आए उस समय भगवान बाबा ने आपको कैसे ये दृढ़ विश्वास दिलाया जो नींव बाबा ने रखी विश्वास की उसके बलबूते पर ही आज आपको इतने अनुभव हो रहे हैं भगवान बाबा के अंतर्यामी होने के अनुभव हो रहे हैं। तो पहले इंसिडेंट क्या हुआ कहां से शुरुआत हुई आपकी भगवान बाबा के
जब मेरा मित्र मेरे साथ आया था 1960 में
1960
मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट था वो।
अच्छा
तब उसको एक ईयर की प्रॉब्लम थी राइट और वो हियरिंग एड रखता था।
अच्छा
और उसने सोचा कि मैं डॉक्टर जब बन जाऊंगा थेटोस्कोप एक कान से सुनना पड़ेगा एक कान तो मेरा कोई काम ही नहीं करता
नहीं कर
तो मैं कैसे उसके सुनूंगा तो मेरे को जो साईं बाबा कुछ कर सके वो तो महावीर का डिवोटी था।
अच्छा
जैन था फिर भी आया था मेरे पास और स्वामी ने उसका हियरिंग एड हमारे सामने निकाल दिया था।
अच्छा
जान गए थे कि इसके लिए वो आया है तो उसने वो निकाला और टच किया था तब हमने सोच लिया कि मेडिकल विटनेस वो सुनने लगा। मेरा मित्र ने बोला किशोर शाह कि देखो गाड़िया मैं सुनने लगा हूँ कान से।
देखिए 1960 के अंदर में तो सर्जरी भी नहीं थी
नहीं
कान की सर्जरी भी
इतनी एडवांस सर्जरी नहीं थी अभी अभी सभी एडवांस सर्जरी अभी हुई तो साइंस एडवांस हो रहा है धीरे 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 लेकिन वो मैं 1960 की बात करता हूँ तब स्वामी ने ये मेरे को विटनेस किया था। मेरे
तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे सब जो साई भक्त हैं हमारे भाई और बहन हैं जो सुन रहे हैं
देखी कि स्वामी यहाँ महासमाधि रखी है लेकिन समाधि पर इतना पावर है
जी
कि उतना आप आकर एक दफा माथा तो टेको
लाखों लोगों का ये अनुभव है
आपको इतनी शांति मिलेगी इतनी शांति इधर अभी भी है
शांति और प्रेम दोनों। तो हमारी भगवान बाबा से ये प्रार्थना है कि जैसे हमारे भी दिलों के अंदर में उस प्रेम को उस विश्वास को उजागर करके और उसके जैसे कि आपने कहा हम भगवान बाबा के समीप आए उनकी समाधि पर आए अपना माथा टेकें और उनकी शरण में जाएं तब वो हमारे द्वारा भी लीलाएं करना प्रारंभ करेंगे
जरूर।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गाड़िया कि आप आए हमारे स्टूडियो के अंदर में और आपने अपने इतने मनोहर इतने सुंदर अपने अनुभव हम सब लोगों के साथ में बांटे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बस ये स्वामी का हमको धन्यवाद करना चाहिए कि हमको सबको मानव सेवा और मानव के लिए जो काम दिया है वही करते रहेंगे बस हमको कुछ नहीं चाहिए। साई राम
उसी में हमारा जीवन सार्थक होगा।
साई राम
जय साई राम
जय साई राम।
अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार।
आज इसके अंतर्गत स्वर्गीय डॉक्टर किशन गढ़िया जी से हुई हमारी भेंट वार्ता का अगला भाग प्रस्तुत किया गया था। टीम रेडियो साई की ओर से डॉक्टर दीपक आनंद जी मुखातिब हुए।
आप सुन रहे हैं रेडियो साई प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साई प्रेम वाणी। साई प्रेम वाणी में गान सरिता
किसी ने कहा है, निर्मल तन में, निर्मल मन में, निर्मल घरों मकानों में प्रभु को तुम पाओगे केवल निर्मल स्वच्छ ठिकानों में। भगवान बाबा कहते हैं कि स्वच्छता ही दिव्यता का एक और नाम है। स्वच्छता से दिव्यता तक की यात्रा पर बनाए गए एक गीत को हम सुनने जा रहे हैं। इस गीत के तीन अंतरों में व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोई की शुद्धता, पारिवारिक शुद्धता व समाज में स्वच्छ वातावरण के निर्माण को आध्यात्म से जोड़ा गया है। इस गीत को श्री सत्य साई सेवा संगठन के स्वच्छता से दिव्यता तक के कार्यक्रम के थीम सॉन्ग के रूप में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ ने तैयार किया था।
भारत के लिए उठेगा हर पांव, स्वच्छता से स्वस्थता, पवित्रता से दिव्यता, स्वच्छता से स्वस्थता, पवित्रता से दिव्यता की राह पे चलना है बंदो हमको सुबह शाम।
श्री सत्य साई सेवा संगठन द्वारा 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष स्वच्छता से दिव्यता तक कार्यक्रम चलाया जाता है। इसी कार्यक्रम को ऊर्जावान बनाए रखने के थीम सॉन्ग को अभी हमने सुना और भगवान कहते हैं कि आंतरिक और बाह्य स्वच्छता दोनों ही आवश्यक है, तभी आध्यात्मिक प्रगति संभव होगी।
साई राम प्रेमावतार श्री सत्य साई के आज के प्रसारण में हम सुनने जा रहे हैं उन घटनाओं के वर्णन को जबकि भक्तों की बढ़ती हुई अपार भीड़ को देखकर एक नया मंदिर बनवाया गया। इसी के साथ मछलीपट्टनम के समुद्र तट पर बाबा द्वारा शेष शैया पर दिव्य दर्शन एवं अमृत के सृजन की घटनाओं का विवरण भी सुनेंगे। प्रस्तुत है सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से लिए गए अलौकिक प्रसंग।
अष्ट दिशाओं से भक्तों का अनवरत प्रवाह पुण्यग्राम पुट्टपर्ती की ओर बहने लगा। अभागे संकटग्रस्त, गंभीर विचारवान, भाग्यानुचिंतक तथा ज्ञान पिपासु, इन चार प्रकार के भक्त अधिकतर आया करते थे। बाबा की अत्यंत अद्भुत महिमा का समाचार सुनने पर भला जनता कैसे चुप रह सकती थी। बाबा का संकल्प भी यही था कि वे सब उनके पास आकर मन शांति एवं आरोग्य प्राप्त करें। बाबा ने सदा कहा है कि सब आओ, अपनी दुखपूर्ण वार्ता को मेरे पास छोड़कर आनंद का भंडार भर भर कर ले जाओ। उस समय बाबा के सानिध्य में रहने वाले लोग कहते हैं कि शुरू शुरू में रोग से पीड़ित तथा भूत बाधा से पीड़ित लोग ही कतार में आया करते थे। कितना ही पुराना एवं असाध्य रोग हो, यह धन्वंतरी उसे पलक झपकते ही ठीक कर देता है। ये शुभ वार्ता सुन अनेक भक्त अपने व्याधिग्रस्त संबंधियों को ले पुट्टपर्ती आने लगे। रोग निवारण के कार्य में भी बाबा अत्यंत संतोष से लगे रहते थे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस कथनानुसार अस्वस्थ देह के लोगों को जप ध्यान नाम स्मरण आदि कष्ट साध्य होने के कारण साधकों की इन बाधाओं का निवारण करना आवश्यक है। बाबा ने भी ये बात बार बार कही है। इन पीड़ित आर्त दुखी लोगों के अतिरिक्त शिरडी बाबा को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त भी पुट्टपर्ती आने लगे। अनेक लोगों ने बाबा को अपना कुल देवता, अपनी कामधेनु, अपनी जगत जननी माता के रूप में अवतार लिया मानकर वे आनंद में डूबकर पुट्टपर्ती आने लगे। कुछ लोग कौतूहलवश बाबा का निरीक्षण मात्र करने पधारे। कई ये सब कैसे हो सकता है ऐसा मानकर अपने विचारों की पुष्टि करने ही पुट्टपर्ती आए, किंतु बाबा के दिव्य सम्मोहन ने सबको अपने वश में कर लिया। बाबा के कुछ भक्तों ने अपने अपने ग्राम तथा गृहों को पावन करने की प्रार्थना की, उनकी विनती स्वीकार कर बाबा ने बेंगलोर तथा वहां के भक्तों के ईष्टों के गांव तथा घरों में पधार कर उन्हें पवित्र किया। मिर्जापुरम, कोलापुरम, पीठापुरम, बड़ौदा, सोंढूर आदि राजवंशों की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को बाबा ने स्वीकार किया। गरीब मुनीम से लेकर अमीरों तक सभी को अनुग्रहित कर उनके दुखी मनों को सांत्वना प्रदान की। मैसूर राजवंश के लोगों ने पुट्टपर्ती आकर बाबा के दर्शन किए और आदरपूर्वक उन्हें आमंत्रण देकर अपने घरों में ले जाकर उनकी पूजा अर्चना की। उस समय उस छोटी आयु में ही बाबा ने बेंगलोर निवासी एक भक्त की अपने दिव्य करों से शल्य चिकित्सा कर उसे प्राणघातक रोग से मुक्त किया। अपने दिव्य हाथों से सृजित कर आवश्यक आधुनिकतम शस्त्रों का निर्माण कर बाबा ने प्रवीण शल्य चिकित्सकों से भी अधिक स्वयं के चातुर्य कौशल एवं ज्ञान का परिचय दिया। इन महिमाओं से अनेक प्रदेशों के लोग आकर्षित हो पुट्टपर्ती पधारने लगे। आगंतुकों के रहने की सुविधा के लिए तथा बाबा के नित्य निवास के लिए एक पृथक मकान की आवश्यकता अनुभव होने लगी। कर्णम सुबम्मा के घर में रहकर उसे तथा उसके बांधवों को कष्ट देना बाबा को नहीं भाया। नवरात्र आदि उत्सवों के समय सत्यभामा मंदिर एवं गोपाल स्वामी मंदिर के बीच स्थित एक स्थान पर छप्पर डलवाकर सुबम्मा यात्रियों के रहने का प्रबंध करती थी। उसे स्थान पर एक कोठी तैयार करने का तिरुमल राव तथा अन्य भक्तों ने निर्णय किया। बीच में एक बड़ा हॉल भजन प्रार्थना के लिए, उसके आगे पीछे दो बरामदे, सामने के बरामदे के दोनों कोनों में एक एक कमरा, उसके दाईं ओर ही बाबा का निवास स्थान, पिछली ओर के बरामदे के भी दोनों कोनों में दो कमरे, एक रसोई घर और एक स्नान गृह, इस प्रकार का नक्शा तैयार किया गया। वास्तु यज्ञ के दिन बाबा वहां पधारे और गुनी वेंकट नामक एक मजदूर को बुलाकर देखो इस जगह खोदो यह आज्ञा दी। उस जगह खोदने पर अनेक शिवलिंग निकले, कुछ पारदर्शक अनेक छोटे बड़े भिन्न भिन्न वर्णों से तैयार किए हुए थे वे शिवलिंग। परंतु चमत्कार ये हुआ कि नया शिवलिंग निकलते ही पहला शिवलिंग अदृश्य हो जाता था। क्यों स्वामी, ऐसा क्यों, ये शिवलिंग कहां गए? जब किसी भक्त ने पूछा तब वे अपने उदर की ओर संकेत करते हुए बोले, वे सब यहां हैं। शिवरात्रि के लिंगोत्सव के शुभ मुहूर्त में बाबा के उदर से निकले शिवलिंग का दर्शन कर अनेक भक्तों ने आनंद प्राप्त किया है। सत्य साई मंदिरम तैयार होते ही बाबा ने कर्णम के घर से विदा ली और अपने लिए आगे के बरामदे का 6 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा कमरा पसंद किया। इस समय तक एक दो बार मद्रास जाकर वहां की जनता के हृदयों पर प्रेम भरी विजय प्राप्त कर वहां के सैकड़ों लोगों को धर्म मार्ग एवं ब्रह्म मार्ग का उपदेश दिया था। एक बार वे मछलीपट्टनम भी गए। मछलीपट्टनम में एक दिन जब बाबा समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो वे अचानक चलते चलते सीधे समुद्र में प्रवेश कर गए। भक्तों को परिस्थिति को समझने में कुछ समय लगा कि इतने में उन्हें स्वामी की आवाज सुनाई दी। भक्तों ने समुद्र की ओर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समुद्र की लहरों पर शेष शैया पर क्षीर सागर में शयन करते हुए स्वामी दिखाई दिए। देखते ही देखते अगले ही पल पलक झपकते ही भक्तों ने देखा कि स्वामी ठीक उनके बाजू में खड़े हैं। सबसे अधिक विस्मय की बात यह थी कि बाबा के वस्त्र जरा भी गीले नहीं थे। एक अन्य दिन जब बाबा मछलीपट्टनम के समुद्र के किनारे खड़े भक्तों से बातें कर रहे थे, अचानक उन्होंने एक चांदी का कटोरा लहरों के बीच जोर से फेंका। ठहरिए ठहरिए, देखते रहिए, कहकर बाबा ने सबका समाधान किया। लहरों ने कटोरे को किनारे पर पहुंचाया। बाबा ने जब उसे उठाया तो वो भरा हुआ था, समुद्र के जल से नहीं वरन सुगंधित एवं विशिष्ट प्रकार के मधुर जल से, मानो सत्य साई बाबा की आज्ञानुसार सागर राज ने उनकी सेवा में अमृत अर्पित किया। इस दिव्य महिमा को देखकर अमृत पान करने वाले कई भक्त बाबा की सेवा में ही अपना जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प लेकर पुटपर्ती जा वहीं बस गए। इन अलौकिक घटनाओं द्वारा बाबा अपने दिव्य तत्व का परिचय कराना चाहते थे। बाबा ने इस विषय में कहा है कि चतुर्भुज देवता का सहज स्वभाव धर्म अन्य सामान्य मानवों को अद्भुत प्रतीत होता है। उसी प्रकार मैं ये सब तुम्हें आश्चर्यचकित करने के लिए नहीं करता, पर यह तो मेरा स्वभाव धर्म है। मेरे स्वभावानुसार ही मेरा सामान्य सहज कार्य है। भगवान के ये सहज कार्य तर्कशास्त्र, गणित शास्त्र, विज्ञान शास्त्र एवं सभी शास्त्रों से परे है। बाबा की दिनचर्या, बातचीत, आचार विचार सब काल देश से परे है। बाबा की सब चमत्कृतियां उनके लिए सहज हैं, उन्हीं का वो निज स्वरूप है। केवल दिखावे या आडंबर के लिए उनके चमत्कार नहीं हैं, किसी अपेक्षा निमित्त भी नहीं। उस सर्वव्यापी को किसका भय, न्यूनता की कौन सी चिंता, इच्छा भी करें तो किसकी। जय साईं राम।
इस प्रकार भगवान श्री सत्य साई बाबा ने चमत्कारों को अपना सहज कार्य बताया और उनके माध्यम से वास्तव में भक्तों को श्रद्धा और आध्यात्म के सुनहरे पथ की ओर मोड़ दिया। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई राम।
इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होगा। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258 9393258 9393258।
हिंदी भाषा के ये सारे कार्यक्रम आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो साई हिंदी पे भी सुन सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे कि रेडियो साई हिंदी एक ही शब्द है, और वहाँ कमेंट बॉक्स में अपने विचार सबसे शेयर करें। इन कार्यक्रमों को अपने मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। हम सब पर हमेशा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा सर्वस्व अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। सधन्यवाद। जय साईं राम।